प्रवचन सार, प्रवचन सभा भाग 9, लेक्चर नंबर 720। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ सिद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यविहारं, नमो वर्षायां, नमो लोये सौवसाहुणं, सुर असुर नरपति वन्दने प्रविनष्टघाति कर्मणे प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वैशेष तीर्थंकर ने सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीया चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदु अरिहो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सिद्धने नमस्करण करिए गण भरणे अध्यापको ने सर्व साधु समूह पशु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करु सामिनी ये ना कि शिव प्राप्ति वने। आचार्य श्री कुमकुंद भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य की टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कान्हा स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं, ये प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से नौवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 53 पर हम आ गए। 53 प्रवचन का जो दूसरा पैराग्राफ है ना, यहाँ टीका लिखा है। ऊपर तो ओरिजिनल टीका है लाइन के ऊपर, उसके नीचे टीका में अनुयार्थ का आ जाएगा। पश्चात पश्चात यानी त्यागी हुए, श्रामण्यार्थी श्रमण का अर्थी, मुनिपना का अर्थी, श्रामण्य यानी मुनिपना, श्रमण यानी मुनि, श्रामण्य यानी मुनिपना, और वो जो चाहता है, जो मुनि होने चाहते हैं उसकी बात है। मुनिपना का अर्थी प्रणत और अनुग्रहित होता है, गुरु को विनय पूर्वक नमन करते हैं। प्रणत प्रणाम करना यानी नमस्कार करना, और वो प्रणत हुए ने वो नमस्कार किया उन्होंने, इस तरह से प्रणत हुए कहेंगे। प्रणत और अनुग्रहित होता है, गुरु की कृपा से अनुग्रहित हो जाता है। अनुग्रहित नहीं, जिसको कहेंगे उपकृत। हाँ, वो कहेंगे आप मुझे अनुग्रहित कीजिए, यानी आप मेरा उपकार कीजिए, ऐसे विनय से कहेंगे। कौन सा उपकार? वो दीक्षा लेना चाहते हैं, आचार्य के पास जाते हैं। वो आचार्य कैसे, उसका हमने वर्णन देखा था कल। अनुग्रहित हो जाते हैं, स्वीकार करते हैं, मुनिपना लेने का पात्र है, फिर दीक्षा देते हैं। ऐसे ही जाकर दीक्षा मांगने वाले को दीक्षा नहीं देते, उनकी पात्रता का विचार करके फिर दीक्षा दी जाती है। लो, समझ में आया? आहा हा। पश्चात श्रामण्यार्थी यानी जो दीक्षा लेने गया है वह जीव प्रणत और अनुग्रहित होता है, संकीति है, शायद संकीति भी हो, यानी हो सकता है शायद संकीति भी हो। समझ में आया, यह पंचम काल है इसलिए क्षोभ संकीति आदि हो, अपना भान है और गुरु की भी खबर है, गुरु की भी खबर है ने वो तो पहचानते हैं उनको, वहां जाकर नमन करते हैं और अनुग्रहित होता है, उसकी कृपा अंगीकार करते हैं। वह इस प्रकार है कि अभी वो बताएंगे विस्तार से, आचरण करने में यानी स्वयं आचरण करने में, मुनिराज जो आचार्य है वो स्वयं मुनि योग्य जो है वो आचरण करते हैं, और आचरण कराने में जो मुनि संघ है उनके आचार्य के अंदर, तो उनसे मुनि धर्म का बराबर आचरण कराते हैं, उनको उपदेश आदि देते हैं। तो आचरण करने में और आचरण कराने में आने वाली समस्त विरति की प्रवृत्ति के समान आत्मरूप ऐसे श्रामण्यपने के कारण जो श्रमण है, ऐसे श्रामण्य का आचरण करने में और आचरण कराने में प्रवीण होने से गुणाढ्य है। ये पूरा एक वाक्य बताया, उनको गुणाढ्य कहा, क्योंकि वो जो मुनि के जो आचरण है वो स्वयं करते भी है करा भी लेते हैं, वो श्रमण है और इसमें वो करने कराने में प्रवीण होने से गुणाढ्य कहा उनको। देखो, आचरण करने में ज्ञानाचार दर्शनाचार निश्चय सहित व्यवहार आचरण करने में और आचरण कराने में, अर्थात दूसरे को भी निश्चय समय दर्शन ज्ञान चारित्र आदि सहित व्यवहार आचरण कराने में, मात्र व्यवहार आचरण नहीं कहा, निश्चय सहित व्यवहार आचरण कराने में आने वाली समस्त विरति की प्रवृत्ति के। देखो, समान यानी तुल्य, तुल्य बराबर एक सा मिलता हुआ, विरति के प्रवृत्ति के समान आत्मरूप क्या कहते हैं, पंच महाव्रत या ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार वीर्याचार, इस प्रकार की शुभ विकल्प की प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति की बात है, एक होता है विकल्प, एक होता है उसकी प्रवृत्ति यानी वो क्रिया, उसके समान रूप अंतर में ऐसी आत्मदशा प्रकट हुई है। समझ में आया, कैसी संधि की है? देखो तो, विरति की प्रवृत्ति के तुल्य आत्मा का रूप, नहीं समझे, बाह्य जैसे उन्होंने व्रत अंगीकार कर किए हैं वैसे उसके समान अंतरंग में उनका स्वरूप है, उतनी विरति उतनी वितरागता प्रकट हुई है, अकेले बाह्य के आचरण है ऐसा नहीं है, हाँ उसकी उसको मिलते हुए यानी जैसी अंतरंग दशा वैसे बाह्य में भी, और यहाँ बाह्य से अंतरंग की बात बता रहे, बाह्य जैसे प्रवृत्ति है तो उसके समान अंतरंग में भी उतनी उनकी वितरागता है। अंतर में ऐसी आत्मदशा प्रकट हुई है यानी वो निश्चय व्यवहार का संधि बता रहे, उसकी कैसी संधि की है? देखो तो, विरति की प्रवृत्ति के तुल्य यानी बराबर उसके समान यानी जितनी विरति है उतने प्रमाण में वहां आत्मा में भी स्थिरता है। तो विरति की प्रवृत्ति के तुल्य आत्मा का रूप यानी विरति की प्रवृत्ति से मिलती हुई उसके समान जो आत्मदशा है सो श्रामण्य है। क्या कहा? जिस प्रमाण में बाह्य विरति है उस प्रमाण में वहां आत्मा की भी दशा है, वही मुनिपना है, श्रामण्यपना है वो मुनिपना। समझ में आया, सम्यक दर्शन का आठ आचार, सम्यक ज्ञान का पांच क्यों कह रहे, आठ आचार चाहिए, कल भी पांच लिखा था इत्यादि। उस प्रकार की जो राग की प्रवृत्ति विरति है उसके समान रूप यानी उस प्रमाण में उसके तुल्य अंतर में दशा होती है। आठ करना, आठ करना, कल भी हमने किया था ना। ज्ञानाचार भी आठ है ना, देखो ज्ञानाचार आठ, दर्शनाचार आठ, हमने चारित्राचार 13 देखे थे, तपाचार 12 देखे थे, और वीर्याचार ये सब जो आचारों में जो इसका जो स्वरूप है वो वीर्याचार, वीर्याचार में ये सब आचारों का पालन करना वही वीर्याचार बताए थे। ये समझ में क्या कहना चाहते हैं? जैसे बाह्य में उनके अभी सब ये आचारों का वर्णन किया है, वो पंच महाव्रत वगैरह है, तो उसके तुल्य उसके बराबर वाली अंतरंग दशा है। तुल्य ने सभी मुनियों की समानता नहीं बतानी है, जितने बाह्य में जैसा है वैसे अंतरंग स्वरूप भी वैसा है। यानी अकेले बाह्य में किसी ने आचरण करने और कराने की बात वो नहीं ली है, निश्चय सहित व्यवहार की बात है।
मेरा एक प्रश्न है, यहाँ सम्यक दर्शन के आठ आचार का है तो दर्शन गुण के लेना क्या?
नहीं नहीं, वो निशंकित वगैरह है ना, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सक, तो वो लगाया उसमें पना, उसको आचार कहा। देखो मिला श्रामण्य पना, सम्यक दर्शन यानी वितराग पने की पर्याय, विरति के समान वहां पर्याय प्रकट हुई है। विरति प्रवृत्ति इतनी है और गुणस्थान नीचे है, ऐसा होता नहीं। क्या कहा? वो विरति वाली प्रवृत्ति रूप है ना, ये पंचाचार कहो या पंच महाव्रत कहो, ये कैसे प्रवृत्ति रूप है, वो प्रवृत्ति तो मुनि योग्य चल रही है, और गुणस्थान यानी जो अंतरंग दशा चौथे की हो या मिथ्यात्व की हो ऐसा नहीं है, ये कह रहे। अंतरंग में भी उतनी ही वितरागता है। यहाँ देखो, विरति प्रवृत्ति इतनी है और गुणस्थान नीचे है, ऐसा होता नहीं। दृष्टि मिथ्या तो हो और बाहर में यह प्रवृत्ति हो तो समान रूप नहीं है, उसका तुल्य नहीं कहेंगे। अंतरंग में तो जीरो और बाहर में यह प्रवृत्ति, ऐसा नहीं है। जितनी बाह्य में जैसी मुनि की दशा है वैसी अंतरंग में भी वैसी मुनि योग्य ही दशा है, ऐसा कहते हैं। यानी अगर मिथ्या तो और बाहर में प्रवृत्ति करते हैं तो उसको क्या कहा? देखो, उसको कहेंगे वह असमान है, अंतरंग और बाहर का कुछ मेल नहीं है वहां पर। समझ में आया? कितनी बात हो। कुंद कुंदाचार्य देव चरणान योग की बात करते हैं तो कहते हैं उसकी पर्याय में प्रवृत्ति है ना, समस्त विरति की प्रवृत्ति, अशुभ राग आदि का अभाव हुआ ना, और शुभ राग की प्रवृत्ति है, मुनि दशा है, अभी शुभ राग की प्रवृत्ति है उनकी दशा में, तो प्रवृत्ति के समान आत्मरूप उसके प्रमाण में उसको आत्मदशा अनुभव दशा तीन कषाय के अभाव आदि वितराग दशा प्रकट है। प्रकट है की बात है, करेगा की बात नहीं है। हा, शुभ भाव विरति है ना, वो विरति तीरसो करना, उसके समान रूप वितराग का पंचाचार का जैसा शुभ भाव है उसके प्रमाण में सामने वितराग दशा समान रूप है, ये कहना चाहते। जैसे बाह्य में मुनि दशा है वैसे अंतरंग में उसके तुल्य उसके बराबर वाली वितराग दशा भी है। वह राग की विरति प्रवृत्ति है, राग की प्रवृत्ति है ना अशुभ से निवृत्ति, और शुभ की प्रवृत्ति है ना, उस राग की प्रवृत्ति के अनुकूल वहां निवृत्ति यानी वितराग दशा हुई है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? देखो वहां तो केवल समान रूप कह दिया और उसमें से गुरुदेव ने निकाल कर बताया, तो इतनी बात हमने ख्याल में आ रही है। देखो ऊपर तो इतना ही बताया था ना, समस्त विरति ने प्रवृत्ति ना समान आत्मरूप एवं श्रामण्यपना। मुनिपना किसको कहा? जैसी वो बाह्य में प्रवृत्ति बताई है वैसी अंतरंग दशा वितरागी दशा। समझ में आया? आहा हा, बाहर में प्रवृत्ति शुभ राग आदि हो, ऐसे पंचाचार हो, और अंदर में वीतराग दशा न हो, वह वस्तु नहीं है। उसे वस्तु कहते नहीं, उसे श्रामण्य कहते नहीं, वो मुनिपना नहीं है, ये कह रहे। बाह्य में नग्न लिंग हो, 28 मूल गुण का विकल्प हो, और पंचाचार आदि ये ज्ञानाचार आदि कहे वह हो। क्या क्या बताए? बाह्य में नग्न लिंग, फिर मूल गुण के विकल्प शुभ राग रूप, और यहाँ जो प्रवृत्ति जो है ना पंचाचार आदि ये वह हो, और अंतर में मिथ्या दृष्टि हो, ऐसी बात नहीं। समझ में आया? निश्चय से व्यवहार की समान रूपता नहीं, अगर ऐसा हो तो उसको कहेंगे निश्चय और व्यवहार की समानता नहीं है। अब यहाँ जैसा निश्चय है उस मात्रा में वहाँ व्यवहार भी होगा। मुमुक्षु कहते हैं यह उत्सर्ग मार्ग नहीं, उत्सर्ग मार्ग है। गुरुदेव कहते हैं नहीं, एक ही मार्ग है।
उत्सर्ग यानी क्या?
अब वो तो उत्सर्ग और अपवाद ऐसे जो छठे सातवें गुणस्थान में बताया जाता है। लेकिन उत्सर्ग क्या, ऐसा कहते हैं यह उत्सर्ग मार्ग है, लेकिन अपवाद मार्ग दूसरा होगा। देखो मार्ग तो एक ही है, अब उत्सर्ग किसको कहना, अपवाद किसको कहना, ये बात है, यही बताए। देखो कि ऐसा कहते हैं कि यह उत्सर्ग मार्ग है लेकिन अपवाद मार्ग दूसरा होगा, कहते ऐसा नहीं होगा। ये राग अपवाद मार्ग है, पंचाचार है वही अपवाद मार्ग है, लेकिन अपवाद मार्ग के अनुकूल उत्सर्ग मार्ग वीतराग की दशा होती है, यूं कहते हैं। ये उत्सर्ग मार्ग यानी अंतरंग में जो मुनि दशा है, अंतरंग में वीतराग का, और उसके साथ साथ वहां जो पंचाचार रूप राग है, प्रवृत्ति है, उसको अपवाद मार्ग का। मैंने किसी को उपवाद है और उत्सर्ग है ऐसे किसी को, ऐसा नहीं, एक ही जीव को ये दोनों बताए हैं। ये पंचाचार ही अपवाद मार्ग है, वह वीतराग मार्ग है ही नहीं, समझ में आया? लेकिन अपवाद मार्ग यानी क्या, विकल्प की दशा, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जितना पंचाचार आदि कहा उस प्रमाण में वहां समान रूप आत्मदशा, जैसे विकल्प की दशा है वैसे समान रूप में आत्मदशा कैसी है, वीतरागी आनंद कंद छठे सातवें गुणस्थान में झूलती दशा होती है, तो व्यवहार के योग्य समान रूप कहने में आता है। इन्हें व्यवहार के योग्य आत्मदशा भी उसके समान रूप है, यानी बाह्य में ये पंचाचार वगैरह है, विकल्प की दशा है, और उसके प्रमाण में उसके तुल्य आत्मदशा भी वहां बरकती है। वो झूलती दशा में झूल दीर्घ करना, झूलती दशा, तो व्यवहार के योग्य और समान रूप कहने में आता है, नहीं तो भी समान रूप है, असमान को हो या भी समान को हो एक ही बात। उसको तो भाव श्रमण और द्रव्य दोनों का मेल है नहीं। भाव साधुपना और द्रव्य क्रिया दो का मेल है नहीं, किसको, जिसको विसमान रूप है उसकी बात कर रहे। समझ में आया? कोई ऐसा ले ले हमें समय दर्शन तो है, यह समझना समय ज्ञान है और अंदर में चारित्र भी है, लेकिन हमारे व्यवहार में दोष है, जितना व्यवहार है उतना हम पाल सकते नहीं, तो ऐसी बात होती ही नहीं, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? प्रश्नकार पूछते पंचम काल की छूट नहीं, समाधान पंचम काल क्या, लेकिन काल कहाँ अंदर लागू पड़ता है, यह पंचम काल की तो बात है, यह पंचम काल के मुनि कहते हैं। कुनकुंदाचार्य कब हुए थे? अरे पंचम काल के मुनि राज है, और उपदेश किसको कहेंगे? चौथे काल वालों को, पंचम काल वालों का ही उपदेश है ना? क्या कहते, देखो फिर से, यह पंचम काल की तो बात है, यह पंचम काल के मुनि कहते हैं। कौन कहते हैं? यह पंचम काल की बात करते हैं या चौथे काल की? सिद्धांत में काल फिर कहाँ है? क्या कहा है? ये जो कोई सिद्धांत है मूलभूत, तो कोई भी काल क्यों ना हो, उसमें वो सिद्धांतों में कोई फेरफार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, स्पष्ट करने को पूछते हैं, उनको भी पता है कि ऐसे प्रश्न जो पूछने वाले हैं गुरुदेव के मुंह से, वो दोबारा लोगों को समझाना चाहते हैं। क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे सारी भ्रमणाएं चलती है, तो ऐसी भ्रमणाएं लेकर वो प्रश्न जानबूझकर पूछते हैं, और गुरुदेव को ये पता है, कहा ना, स्पष्ट करने को पूछते हैं। मुंह चुके थे, दो और दो पांच भी होते होंगे, गुरुदेव जी कहते हो सकता है, कहीं दो और दो तीन भी होते होंगे, कहीं दो और दो पांच होते होंगे, ऐसा है? इसे पूछ रहे, दो और दो चार ही होंगे, काल के कारण कभी तीन हो गए कभी पांच हो गए, ऐसा थोड़ी होने वाला है। छठे गुणस्थान के योग्य पंचाचार ज्ञान आदि के विकल्प है, उसके प्रमाण में सामने वितराग दशा तीन कषाय का अभाव ऐसी समान रूप निश्चय की दशा है, तो उसे श्रमण कहने में आता है। यह है मुनिपना श्रामण्य, जैसे बाह्य में ये जो पंचाचार आदि विकल्प है और अंतरंग में तीन कषाय के चुकड़ी के अभाव पूर्वक वहां वितरागता वर्तती है, नहीं तो उसे श्रमण कहते नहीं। श्रमण उसी को कहेंगे जो अंतरंग और बहिरंग में ये सब उसकी निश्चय व्यवहार समान रूप से हो गए। बाह्य में विषमता हो और अंदर में समय दर्शन ज्ञान सच्चा हो, ऐसा होता नहीं। आप कहेंगे चौथे पांचवे वाले को कहा है? अरे पर वो तो मुनि पर ना श्रामण नहीं कह रहे हम, उसको हम समय दृष्टि कहेंगे, पर यहाँ मुनि की बात चल रही है। मुनि कहे नहीं, हम तो अंतरंग में है, उनका हमारी वितराग दशा चल रही है और बाहर में हमारे नहीं पल रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी उसको कहेंगे उसका सुमेल रहता है। और दूसरी पद्धति से क्या बता रहे, बाहर में व्यवस्थित व्यवहार आचरण हो और अंदर में मिथ्या दर्शन हो, ऐसा होता ही नहीं, उसको भी मुनि नहीं कहेंगे। उसको यहां गिनने में आया नहीं। समझ में आया? ओहो, देखो कितना स्पष्ट करते हैं। 56 पेज पर आया अभी, हाँ, नया पैराग्राफ। अंतर में जहां पंच आचार के विकल्प की भूमि का त्याग दृष्टि में ज्ञान में होने पर भी लगाया, ज्ञान में और दृष्टि में क्या है? ये विकल्प का त्याग ही है। दृष्टि तो किसका स्वीकार करती है? कायम रहने वाले स्वभाव भाव का, जो परिपूर्ण है, उसमें कोई विकल्प कोई राग है ही नहीं, परंतु पर्याय में है। वो दृष्टि जिसको स्वीकार करती है उसमें राग है ही नहीं, तो राग का त्याग करने की बात भी उसमें नहीं रहती। एक बात देखो क्या कहते हैं, अंतर में जहां पंच आचार के विकल्प की भूमि का त्याग दृष्टि में और ज्ञान में होने पर भी, यानी दृष्टि की अपेक्षा उसका त्याग ही है, वो बाहर ही है, उसका त्याग करना ये रहा नहीं, फिर भी ऐसा भाव आता है, उस भाव की भूमिका के योग्य ही समान रूप निश्चय में होता है। ऐसी वितराग दशा तीन कषाय का अभाव क्षण में छठे सातवें में झूलती दशा होती है। वो झूलती झू दीर्घ करना, पढ़ू? अभी साधुपद किसे कहते हैं? समझ नहीं, श्रद्धे नहीं, मालूम नहीं। समझ में आया? देव गुरु शास्त्र, देव गुरु धर्म किसे कहते हैं? उसकी खबर नहीं और माने कि समय दर्शन हो जाए। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। मार्ग वितराग का ऐसा है, वह कोई नवीन है ऐसी कोई चीज नहीं, क्योंकि मार्ग तो एक ही होता है, अनादि से वही है। आगे लिखा है, अनादि से मार्ग ऐसा ही चलता है। कहते हैं, आचरण करने में और आचरण कराने में आने वाली व्यवहार की बात है ना भाई, समस्त विरति की प्रवृत्ति। विरति की प्रवृत्ति यानी शुभ राग, अशुभ से निवृत्ति है ना, पंच महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प, उसके प्रमाण में आत्मरूप अर्थात उसके समान सामने वितराग दशा हो। समझ में आया, यानी जैसे बाह्य में विकल्प है वैसे अंतरंग में उतनी वितरागता है। कोई सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वाले नवी ग्रहवेग जाते हैं, बाह्य में 28 मूल गुण की शुद्ध प्रवृत्ति होती है, समझ में आया, और अंदर में समय दर्शन और ज्ञान हो और छठा गुण स्थान न हो, वह बात यहां नहीं ली। यानी वो ऐसी बात नहीं होते, वो बात नहीं है, ऐसी बात हो सकती। आवाज कम हुआ ना, हेलो हेलो हेलो, यहाँ ये बर, हेलो हेलो, आती आवाज, हेलो हेलो। हाँ देखो यहाँ क्या कहते पढ़ते हैं फिर, ये ग्रेवे कौन कौन जा सकते हैं, हम इत्या दृष्टि कैसे जाएंगे, कंडीशन क्या है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले, यानी जिसको द्रव्य लिंग कहेंगे, भले वो गुणस्थान उनका मिथ्या तो भी क्यों न हो, वो भी जा सकते हैं। अभी उसमें वो सहनन की वगैरह कंडीशन है, ऊपर के उत्कृष्ट 3 सहनन वाले होने चाहिए, शुक्ल लेशा में उनके आयु का बंध होना चाहिए, वो बात होगी उसमें। देखो क्या कहते हैं, यहाँ तो पंचम गुणस्थान वालों की बात की, समय दृष्टि है, ऐसे नहीं कि उनके कुछ मान्यता में फिर है, परंतु अभी वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक वितरागता प्रकट नहीं हुई है। बाह्य में ऐसा ही होगा ना, पहले बाह्य से अंगीकार करेंगे, फिर ध्यान अवस्था में जो 5वें से 7वें में चले जाएंगे, परंतु अभी तो बाह्य में तो धारण किए है, अभी अंतरंग में दशा 2 कषाय के अभाव वाली वितरागता होगी 5वें वाले को, या 4थे वाला भी होगा 1 कषाय के अभाव पूर्वक वितरागता होगी, या मिथ्या दृष्टि भी हो सकते है, वो आता है ना अनंत मार्ग ग्रेवेग गया है, हाँ द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि भी, अभव्य भी, जो कभी होने वाला भी नहीं है सम्यक दृष्टि। हाँ तो ये कह रहे, देखो कोई सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वाले नवी ग्रेवेग जाते हैं, कैसे जा सकते हैं, बाह्य में 28 मूल गुण की शुद्ध प्रवृत्ति होती है, यानी उनकी बात यहां नहीं कह रहे हैं। अब कहीं वहां पर भी बाह्य प्रवृत्ति भी है, समय दृष्टि भी और गुणस्थान 5वां है, उनकी बात यहां नहीं हो रही है, समझ में आया, और अंदर में समय दर्शन और ज्ञान हो और छठा गुणस्थान न हो, वह बात यहां नहीं ली। यहां इस गाथा में वो विषय यहां नहीं है भाई, यहां तो दोनों समान दशा है, उसकी बात लेनी है। जहां जिस गाथा में जो बात उठाई है उसके उस अभिप्राय से हमको समझना है। बाह्य में व्यवहार बराबर शुद्ध हो, 28 मूल गुण, पंच महाव्रत, समिति, गुप्ति, भगवान ने जैसा कहा वैसी शुभ भाव की प्रवृत्ति मुनि के योग्य बराबर पालन करता हो, और अंदर में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आदि हो, गुणस्थान छठा न हो, समझ में आया, वह उसके ख्याल में भी है कि मेरी भूमिका मुनि की नहीं है, वो अपने को मुनि नहीं मान रहे, उनको पता है कि समय दृष्टि की बात उठाई, समझ में आया। लेकिन बाह्य में ऐसे शुभ भाव की प्रवृत्ति में खंड नहीं, 28 मूल गुण आदि बराबर पालता है, वही शुक्ल लेशा से नवी ग्रहवेग चला जाए, ये शुक्ल रेशा की कंडीशन क्यों डाली? क्योंकि वहां ग्रेवेग में तो शुक्ल रेशा वाले जीव, वहां कायम वहां शुक्ल रेशा ही होती। देखो देवों में एक ही रेशा कायम रहती पूरे उनके होती है, जैसे आनंद प्राण तारण अच्युत सब, वहां से लेकर सारे शुक्ल रेशा वाले ऊपर के सभी। अभी जिस मात्रा नीचे वाले थोड़ी जगन्य की ओर होगी, ऊपर ऊपर के उत्कृष्ट की ओर उनकी रेशा होगी। सर्वार सिद्धि वाले अति उत्कृष्ट शुक्ल रेशा वाले हो गए, यानी उनकी आयु बनती है तो वैसे ही शुक्ल रेशा में ही बंधनी चाहिए। क्योंकि मुनि है, मुनि को कौन सी रेशा होती है? मुनि ने अभी अभी हम तो बाह्य में द्रव्यलिंगी भी कहेंगे, पांचवा गुणस्थान है और शुक्ल रेशा में आयु बांधते हैं, परंतु शुक्ल रेशा कायम नहीं है उनकी। अंतर्मुत अंतर्मुत पीत पद्म और शुक्ल चेंज हो रही है। यहाँ पांचवें गुणस्थान वाले का उदाहरण लिया ना, उनकी बात है। पर आयु बढ़ने के समय उन्होंने शुक्ल रेशा ने ग्रहवेग की आयु बांधी थी, वही जीव वहां चला जाएगा, ये बात है। देखो वही शुक्ल रेशा से नवी ग्रहवेग चला जाए, समझ में आया? देखो गुरुदेव का भी अभ्यास है ना, ये अभ्यास तो था उनका भी करना नियोग का, नहीं तो वहां शुक्ल रेशा होती है और वहां से उस शुक्ल रेशा में वहां जाता है, ये कौन बात बता सकते हैं? अंदर मुनिपना है नहीं तो वह समान रूप नहीं रहा। भले बाह्य में व्यवहार कितना भी जिसको कहीं निरतिचार पालन करता हो उसको समान नहीं कहेंगे, अगर अंतर में वैसी छठे की जैसी भूमिका नहीं होगी तो। व्यवहार निश्चय समान रूप न हुआ इसलिए उसको द्रव्यलिंगी कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को भी द्रव्यलिंगी और सम्यक दृष्टि आदि को भी द्रव्यलिंगी कहते हैं, समझ में आई ना बात? मैंने ये तीनों ही गुणस्थान वाले हो सकते द्रव्यलिंगी, अंतरंग में जो छठा सातवां गुणस्थान नहीं है और बाह्य में ये निरतिचार पालते, अभी पालन करने का शुभ भाव लिया इसलिए छठा गुणस्थान गया, सातवें की बात नहीं उठाई यहाँ पर। क्योंकि सातवें में बाह्य में आचरण बाह्य में शरीर तो वैसा ही दिखेगा, परंतु वहां विकल्प की भूमिका नहीं, निर्विकल्प भूमिका होगी वहां पर, नहीं समझे? शुभ राग छठे में आएगा कि सातवें में आएगा? छठे की भूमिका में शुभ राग है, इसलिए सातवें में वो कुछ पालना छोड़ देते हैं ना, वहां तो कुछ प्रवृत्ति रूप नहीं है। प्रवृत्ति के विकल्प कब हो उठेंगे? छठे में है तब। जैसे पांच समिति हम देखते हैं, देखकर चलने का विकल्प कब है? छठे में है। अब चलते चलते सातवें में आता है तो उसका उपयोग अंदर में अपना हो, समझ में आई ना बात? देखो ये द्रव्यलिंगी की बात है ना, 56 पेज पर। तीन प्रकार के बताए उन्होंने।
देखो यहाँ द्रव्यलिंगी के बारे में स्वामी जी कितने कंफर्म थे।
हाँ बिल्कुल, यानी पहला गुणस्थान वाला है, चौथा है, पांचवा, देखा ना, मिथ्या दृष्टि को भी द्रव्यलिंगी और सम्य दृष्टि आदि को भी द्रव्यलिंगी कहते, परंतु बात क्या है, जैसा व्यवहार है वैसा निश्चय वहाँ प्रकट नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो पहले गुणस्थान वाला है परंतु बाह्य में व्यवहार बिल्कुल अति जिसको निरतिचार पालन कर रहे।
जयपुर में अपने पड़ोसी जो थे वो हमेशा कहते थे मैं ना निर्णय नहीं हुआ, अपने को फोन करके प्रश्न करते थे।
क्योंकि जैसा व्यवहार है वैसा निश्चय है नहीं, समझ में आया? निश्चय जैसा है वहां ऐसा व्यवहार है ही, वह बात यहाँ ली ही नहीं। भाई क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहना चाहते हैं? जैसा निश्चय वहां तो व्यवहार होता ही होता है, परंतु यहाँ बाहर से बात करें, जैसा व्यवहार है उसके समान रूप से वहां निश्चय दशा है, अंतरंग दशा है, अगर नहीं उसकी बात यहाँ नहीं उठाई। 57 पेज पर आए, यहाँ जिसे गुणस्थान योग्य निश्चय दशा प्रकटी है उसे ऐसा व्यवहार होता है ऐसा नहीं लिया, वो तो होता ही है हमेशा। क्या कहते हैं, जैसी अंतरंग दशा है वैसे बाह्य में व्यवहार होता है, यहाँ इस गाथा में वह विषय नहीं है। देखो लेकिन ऐसा व्यवहार हो वहां निश्चय ऐसी दशा होती ही है ऐसे लिया है, चरणानियोग की कथनी है ना, इन्हें चरणानियोग का कथन है, इसलिए बाह्य में ऐसी दशा है तो अंतरंग में ऐसा निश्चय है ही है, ये कहना चाहते हैं। यानी जिसको नहीं है उसकी भी बात यहाँ नहीं उठाई। चरण अनुसार द्रव्य है वह लेना है, चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम, उसकी बात यहाँ है। ऐसी दशा हा हा, छठे गुण स्थान में जो विरति की प्रवृत्ति का शुभराग है, देखो क्या कहा उसको, विरति की प्रवृत्ति का शुभराग उसके प्रमाण में, उसके समान बताए थे ना, यानी उसके प्रमाण में वहां वीतराग दशा निश्चय है, उसे साधुपन साधुपद कहने में आता है, उसको श्रामण्य कहा। ये चरणानियोग की शैली है, इसलिए ये तो बाह्य जिसको हम व्यवहार नाम देते हैं उसकी अपेक्षा से कथन आया, इसलिए उसको पहले सिद्ध करके फिर वैसी ही अंतरंग में वितरागी दशा होती है, यह यहाँ का विषय है। हमेशा हम कैसे जो मुनिपना है अंतरंग में वैसी उनको बाह्य दशा होती ही होती है, उसको ना नहीं कह रहे, परंतु यहाँ का विषय अलग है। यहाँ पहले बाह्य दशा वर्णन करके वहां वैसी अंतरंग में भी उसके समान उसके तुल्य अंतरंग दशा होती है, यह यहाँ का विषय है, और उसको हम यहाँ श्रामण्य कहेंगे, मुनिपना कहेंगे। ऐसे श्रामण्यपने के कारण उनको श्रामण्यपना क्या होता है उसको बताना था। हाँ, क्योंकि वो गणी यानी जो आचार्य है उनका स्वरूप पहले बता रहे हैं, उनके पास जाकर ये दीक्षा यानी प्रणत हो रहे, अनुग्रहित हो रहे हैं, इसलिए देखो जरा टीका निकालो। हाँ, 52 पेज पर दो लाइन के बीच वाली टीका है ना, उसमें 30 पहली लाइन से पढ़ती हूँ मैं। अब ये क्या है यहाँ पर, ये गणी यानी जो आचार्य है जिनके पास दीक्षा लेना है उनका यहाँ वर्णन चल रहा है। वो कैसे, वो तो स्वयं श्रमण है, तो उनको श्रमण क्यों कहेंगे, तो ये बात यहाँ बता रही है। ये पहले टीका के दो तीन वाक्य फिर पढ़ते हैं, देखो। पच्छी श्रामण्य अर्थ यानी जो अभी दीक्षा लेने जा रहा है होना चाहता है वो प्रणतर ने अनुग्रहित थाय छे ते आ प्रमाणे, इसके आगे आचरवामा अने अचरावामा आवती, यानी जो स्वयं आचरण करते है और आचरण कराते हैं। पेज 52 दो लाइन के बीच में मैं पढ़ रही हूँ, सेकंड लाइन। समस्त विरतिनी प्रवृत्तिना समान, समान यानी तुल्य, उसके प्रमाण में आत्मरूप यानी आत्मा की दशा उसके प्रमाण में है, यानी जैसे बाह्य विरति की प्रवृत्ति है, विरति की प्रवृत्ति यानी ये पंचाचार पांचवा व्रत 28 मूल गुण वगैरह जो है उसके समान उसके तुल्य उसके बराबर वाली अंतरंग वितराग दशा है। एवा श्रामण्यपना ने लीधे, ऐसा जो श्रामण्यपना जिनमें है वो है श्रमण। ये आचार्य कैसे, वो स्वयं श्रमण है, ये बात बता रहे। आगे का भी पढ़ेंगे हम यहाँ आके अपने पेज पर आना। उनको श्रमण कहा और फिर बाद में उनको गुणाढ्य भी कहेंगे, वो बात अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो 57 पेज पर सेकंड पैराग्राफ। ऐसे श्रामण्यपने के कारण, श्रामण्यपना उनको क्यों कहा, क्योंकि जैसा उनको बाह्य विरति रूप प्रवृत्ति है वैसी अंतरंग दशा है, इसलिए वो श्रामण्यपना है, इसलिए वो श्रमण है। पहले ये बात नक्की की। ऐसे श्रामण्यपने के कारण, ऐसे साधुपने के कारण जो श्रमण है, देखो कितनी स्पष्ट टीका है। ऐसे साधुपने के कारण वह साधु है, कौन, जिनके पास अभी गए हैं दीक्षा मांगने के लिए, जिनको गणी कहा, जिनको आचार्य कहेंगे हम। समझ में आया, ये तो बाहर से नग्न हो और उसके लिए आहार आदि लेता हो तो भी कहते हैं कि नग्न तो है ना, जय नारायण। क्या कहा, अभी समाज में अभी आजकल क्या परिस्थिति उसकी बात बताए, केवल क्या देखते, बाहर नग्न तो है ना, बाकी वो तो जिसको कहीं उद्दिष्ट आहार वगैरह सब चल रहा है, उसकी परीक्षा है नहीं, दृष्टि की खबर नहीं, तत्व की खबर है नहीं। समझ में आया? कठिन मार्ग भाई। वर्तमान में लोगों के ऐसा लगे दूसरी प्रथा चली है ना, मुमुक्षु कहते हमसे तो अच्छे हैं, क्योंकि ये समाज में ऐसी भ्रमणा है। अरे हम तो क्या दें, घर में रहते हैं, इतने कपड़े वगैरह पहनते हैं, तीन तीन बार खाते हो, चाय पानी चलती रहती है दिन भर, आपसे तो अच्छे हैं, हमसे तो वो अच्छे हैं कि नहीं है, ये कह रहे हा? अरे सब गृहस्थी छोड़ दी है, नग्न रहते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं,
ताराबेन कुछ बताना चाहते हैं।
क्या है? ऐसे बोलते आप? आप नहीं बोलते, उन्होंने सुना है ज्यादा, क्योंकि वो उनका ज्यादा ऐसे समाज के साथ संबंध आता है। बॉम्बे वालों को कुछ नहीं समझता यहाँ बैठे बैठे। गांव में बहुत चलता है,
राजस्थान में।
पूज्य गुरुदेव श्री, हमसे अच्छे का क्या अर्थ? बिगड़ा हुआ दूध छाछ में भी नहीं आता, क्या कहा? अरे छाछ का भी कुछ उपयोग होता है, परंतु बिगड़ा हुआ दूध तो छाछ से भी बदतर है, नहीं कुछ उसके काम का नहीं है। क्या कहा, समझ में नहीं आया? बिगड़ा हुआ दूध मीठी छाछ से भी जाता है, छाछ समझे ना, मट्ठा, क्योंकि मीठी छाछ हो तो रोटी खाने में चलती है। बिगड़ा हुआ दूध तो छाछ में से भी जाता है, यानी उससे भी गया बीता है, ऐसा कहेंगे। यहाँ वह बात है, मुमुक्षु जानबूझ के कहते समझ में नहीं आया। गुरुदेव श्री कहते हाँ, वह तो उन्होंने पूछा इसलिए दृष्टांत दिया, दूध बिगड़ा हो ना दूध, तो बिगड़े दूध के साथ कोई रोटी खाता है, मीठी छाछ हो तो खाते है, ये छाछ रोटी के साथ तो खा सकते हैं, छाछ खाली पी भी सकते हैं ना, तो बिगड़ा हुआ दूध तो उससे तो कुछ खाने के लिए काम का नहीं है। ऐसे अंदर में निश्चल व्यवहार में बिगड़ा हो, पंचम काल के कारण दोनों में बिगड़ा हो, फिर भी हमारे से अच्छे है ऐसा कोई कहे वह झूठ है। झूठ हुआ है ना, वो झूठ चाहिए, झूठ है। ये गुजराती में ऐसा जो लिखे तो चलता है, हिंदी में वो झ वाला जो चाहिए, ऐसी व्याख्या है नहीं। हमारे से अच्छा है उसका अर्थ है क्या? समझ में आया? एक आदमी उपवास करके एक वक्त खाता है अथवा एक कण खाता है और दूसरा एक वक्त खाता है, तो हमारे से तो अच्छा है ऐसा है? मुमुक्षु कहते नहीं। नहीं कहां से आया? प्रतिज्ञा लेकर उपवास तोड़ देता है, यह समझने की चीज है, ऐसी चीज है भाई, ऐसा कठिन काम है भाई। मार्ग को समझो, सत्य निश्चय व्यवहार अलौकिक बात है बापू, इसमें किसी की सिफारिश नहीं चलती। क्या कहा? तो किसी के सिफारिश से, किसी के कहने मात्र से वहां धर्म नहीं होने वाला है। 58 पेज पर आते हैं। अनंत तीर्थंकरों का, अनंत गणधरों का मार्ग है, अनंत इंद्रों ने स्वीकारी हुई वस्तु की स्थिति है, वो इंद्रों ने करना उसको। गुजराती में इंद्रों के ऊपर बिंदी नहीं आती, यहाँ आती है, हिंदी में आती है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, आहा हा, देखो ना, चरणानुयोग की शैली गजब बात है ना, यानी हे चरणानुयोग पर निश्चय को नहीं छोड़ा है, बिल्कुल उसके बराबर वहां निश्चय बिल्कुल होता ही है, ऐसी बात यहां उठाई। ऐसे श्रामण्यपने के कारण जो श्रमण है, आहा, जिसका व्यवहार पंचाचार शुद्ध है, उस प्रमाण में जिसे निश्चय वितराग दशा भी प्रकट हो गई है, उसे श्रमण कहने में आता है। वास्तव में तो श्रमण वंदनिक है, वह कोई 28 मूलगुण के विकल्प के कारण वंदनिक नहीं। क्या कहा? उसके विकल्प के बराबर अंतरंग में वितराग दशा है और उस कारण वे वंदनिक है। वंदनी कहने उनके नमस्कार करने योग्य। ये 28 मूल गुण का विकल्प है ना, वह तो राग है, समझ में आया। वीतरागी दशा जो हुई है वह वंदनिक है। वंदनिक का अर्थ समझते हैं आशा? नमस्कार करने, वंदन करने योग्य, वंदामि कह रहे, वंदन करने योग्य। ये कौन सी दशा वंदन करने योग्य है? वीतरागी दशा, समझ में आया। इसलिए कहते हैं कि इसलिए उसे श्रवण कहने में आया है, ऐसे श्रामण्य का आचरण करने में, ऐसे श्रामण्य का, देखो यानी ये जो बाह्य में और अंतरंग में जो दशा है, ऐसे श्रामण्य का जो स्वयं आचरण करते और कराते हैं, कराते हैं अन्यों को, केवल बाह्य उनके व्रत आदि नहीं देख रहे, उनके अंतरंग दशा के साथ साथ वो बार बराबर उनसे करवा लेते हैं। ऐसे श्रामण्य का देखो, पंचाचार आदि विरति और अंदर समान रूप, ऐसा श्रामण्य का आचरण कराना है ना? अंदर समान रूप का अर्थ मालूम है ना? अंदर उसके योग्य वितरकता, ऐसे श्रामण्य का आचरण, पहले श्रवण क्या है वो बताया, और ऐसे श्रामण्य का आचरण करने में और आचरण कराने में प्रवीण, उसमें एक्सपर्ट होने से जो गुणाढ्य है, गुणाढ्य की व्याख्या की, समझ में आया। ऐसे संत होते हैं, मुनि ऐसा होते हैं, मुनि ऐसे होते हैं, हाँ ऐसे होते चाहिए, उन्होंने वो सुधारा उसको, उनके पास दीक्षा लेते हैं, ऐसा कहते हैं, यानी ऐसे मुनि के पास जाकर दीक्षा लेते हैं। समझ में आया? जहां तहां सर झुका दे, उसे खबर नहीं कितनी बात कही है, और यहां बस जय नारायण जिसको कहे ना, जहां वहां जाकर सिर झुका देता है, ढोक देता है, ढोक देना समझते, मारवाड़ी में कहते ढोक देना, ढोक देना नहीं नमस्कार करना, सिर झुकाना है ना, चरणानुयोग की चूली का, समझे ना, चूली का कहा ना, चरणानुयोग सूचक चूली का, लो अहो हो, वह गुणाढ्य की व्याख्या की। ऐसे गुणी मुनि होते हैं, एक गणी बात अलग है, ये गुणी क्यों कहा, गुणी यानी गुणवान, ये द्रव्य के गुणी कहते वो बात नहीं है, गुणी यानी उनके इतने सारे गुण अच्छे प्रकट है, प्रकट, ये कौन से गुण, ये लौकिक भाषा है ना, गुणी है, ऐसे गुणी मुनि होते हैं, भाषा है ना, समणम गणिम गुणढम, समणम गणिम गुणढम, ऐसे पहले पद का अर्थ हुआ, श्रमण ऐसे है और गुणी ऐसे गुणाढ्य है, आचार्य जिनके पास दीक्षा लेते हैं वे, यानी जिनके पास जाकर दीक्षा लेनी है वे आचार्य ऐसे गुणाढ्य होते हैं। ओहो हो, सर्वलौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवा करने योग्य होने से, देखो कैसे है मुनि, सर्वलौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवा करने योग्य, ऐसी कोई दुगंछा, ऐसी कोई शरीर की क्रिया विरुद्ध है ऐसा है नहीं, सर्वलौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवा करने योग्य होने से और कुलक्रमागत, कुलक्रम से आगत, कुलक्रम से उतर आने वाले, क्रूरतादि दोषों से रहित, जिसका कुल ही ऐसा ऊंचा है कि जिसमें जन्म हुआ था, शांत परिणामी जैसी सज्जनता, जिसके कुल में ही सज्जनता थी ऐसा कहते, देखो समझ में आया, लौकिक नीति भी उसके कुल में बड़ी अच्छी थी ऐसे में जन्म हुआ, यानी कौन से कुल में वो जन्मे थे उसकी बात है, वह मुनि हुआ ऐसा मुनि, समझ में आया। सर्वलौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवा करने योग्य होने से और कुलक्रमागत यानी कुलक्रम से उतर आने वाले, क्रूरता भी दोषों से रहित है। कितनों के कुल में जन्म से क्रोध की, मान की, कपट की, लोभ की क्रूर प्रवृत्ति होती है। कुल में ही ऐसा स्वभाव होता है तो उसके पुत्र में वैसा स्वभाव आता है। वो तो चलती है ना, उनकी दुश्मनी चलती है, एक दूसरे के साथ मारपीट चलती है, ये सब क्या है, कुलक्रम से वो हिंसा आदि उनके दोष आते रहते हैं। यहाँ तो कहते हैं सज्जन पुरुषों के कुल में जिसका जन्म है, लौकिक में जिसको नीतिमान सज्जन कहते हैं। हाँ देखो समझ में आया, जिसकी माता, जिसके पिता, जिसका कुलक्रमागत क्रूरता आदि दोषों से रहित है, क्रूरता नहीं, समझ में आया, जो कुल विशिष्ट है, ऐसे आचार्य कुल विशिष्ट है ऐसा कहते हैं। कुनाढ्य का दूसरे में कुल विशिष्ट का, जिसके पास दीक्षा लेनी है उसका शरीर भी ऐसा हो, पुण्य प्रकृति ऐसी हो, लोग देखे तो ऐसा लगे कि ओ हो यह उत्तम प्राणी है, उत्तम सज्जन के कुल में उनका जन्म है, ऐसा जिसका लोकाचरण जिसके कुल में ठीक था उसमें जन्म हुआ था उसे कुल विशिष्ट कहते हैं। समझ में आया, कुल विशिष्ट है। अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से क्या कहा, ये वो तो अंतरंग में वो शुद्ध रूप है ही है और उसका अनुमान उनके बाह्य रूप से हो जाता है। ऐसे बहिरंग शुद्ध रूप होने से जो रूप विशिष्ट है, देखो ये रूप विशिष्ट सुंदर है ऐसे नहीं, अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला, शुद्ध आनंद का अनुभव कराने वाला बहिरंग शुद्धपन है। नग्नपना, पंच महाव्रत आदि बाह्य शुद्ध व्यवहार बिल्कुल शुद्ध है। पहले व्यवहार से निश्चय यहाँ कहा था, अब यहाँ निश्चय है वैसा उसका शुभ भाव है ऐसा कहा। मुमुक्षु कहते बाहर की क्रिया अंदर का अनुमान कराती है, पूज्य गुरुदेशी अनुमान करता है यहाँ वह लेना, बाह्य विरति थी उस प्रमाण में निश्चय रूप था। यहाँ कहते हैं निश्चय के प्रमाण में उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी ओर से बता रहे अंदर की ओर से। शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से जो रूप विशिष्ट है, बहिरंग में है ना, जिसका आचरण बराबर ऐसा शुद्ध निर्दोष है कि शुद्ध आनंद का अनुभव उन्हें है और वे शुद्ध मुनि है ऐसा अनुमान हो जाए। पहले श्रामण्य क्या होता है उसके लिए उन्होंने बाह्य वृत्ति और अंतरंग में समानता बताई है, अब ये जो ऑलरेडी जो गुणाढ्य है उनकी बात हो रही है, तो अनंग अंतरंग में जैसा उनका शुद्ध रूप है उनके बाह्य प्रवृत्ति भी ऐसी ही है। तो अंतरंग का अनुमान उनके बाह्य रूप देखने से हो जाता है ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। और शुद्ध मुनि ऐसा अनुमान हो जाए। तीसरी लाइन, बाहर की क्रिया का ठिकाना नहीं और अंदर में शुद्ध हो, आनंद है और दशा ऊंची है ऐसा होता नहीं ऐसा कहते। समझ में आया, कोई कहे कि बाहर में आचरण में तो अनेक प्रकार है, पंचम काल है तो एक प्रकार का उदय नहीं, भिन्न भिन्न उदय है, तो कहते हैं उदय नहीं, वह तो भूमिका के प्रमाण में उसे ऐसी दशा होती ही है। समझ में आया, हाँ हाँ हाँ। शुभ भाव का उल्लंघन करके दूसरी दशा होती नहीं, पंचम काल है अभी उसके लिए और जोड़ देते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है उसके अलग अलग होते हैं, ऐसे कुछ न कुछ चर्चा चलती है समाज में। भगवान आत्मा मुनि, वो मुनि का नीरस होता है हमेशा, वितराकपने है उसका अनुमान करने वाला कराने वाला बाह्य का शुभ भाव ऐसी चीज है। समझ में आया, नग्नपना वितरागी दशा बाहर में पंच महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प शुद्ध स्वरूप का अनुमान कराने वाला बाह्य रूप कहने में आया है। प्रश्नकार पूछते हैं, बहिरंग से शुद्ध का अनुमान होता है? समाधान, ऐसे अनुमान होता है कि ऐसा है तो अंदर है ही, अंदर है ही उसकी बात करते ना, व्यवहार है तो निश्चय है ही। यहाँ ऐसा, यहाँ निश्चय का अनुमान व्यवहार से करते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा है तो वहाँ निश्चय है ही, समझ में आया? अशुद्ध है ही नहीं, बाहर की शुद्धि बराबर जानते हैं, उसकी दशा छठे गुणस्थान के योग्य जो भूमिका है वह दशांदर है, समझ में आया? कठिन बात भाई। अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से जो रूप विशिष्ट है, यह रूप विशिष्ट है, सुंदर रूप है, यह रूप विशिष्ट की व्याख्या की। रंग काला हो तो काला ही हो, उसमें क्या, काले होते हुए सुंदर नहीं होते? नेमिनाथ भगवान काले थे, सुंदर थे, रूप अलग बात है, रंग अलग बात है। रंग होने पर भी जिसकी सुंदरता, कोमलता, जिसके शरीर में बहुत रूप यानी आकृति आदि सुंदर होती है, समझ में आया? 24 तीर्थंकर में 5 रंग है, लेकिन है सब सुंदर। सुंदर माने सुंदर, उसका शरीर शांत शांत होता है। काले रंग में भी उनका पुण्य प्रताप इतना दिखे, हो उनका अलौकिक पुण्य है। स्वभाव तो वैसा है, लेकिन बाहर की क्रिया, शरीर की क्रिया भी ऐसी है। ओहो, यह चरणानुयोग की बात है ना, इसलिए ऐसी बात लेते हैं। गुणाढ्य कि जिनके पास दीक्षा लेनी है वे आचार्य कैसे हैं? बालकत्व और वृद्धत्व से होने वाली बुद्धि विकलवता का अभाव होने से, देखो विकलवता यानी अस्थिरता और विकलता, बालक जैसे हो उसे अस्थिरता बहुत होती है, इसका जिन्हें अभाव है। बालपन और वृद्ध, वृद्ध में भी ऐसी विकलता होती है, समझे? ऐसी विकलता का बाहर में अभाव देखे, उन्हें विकलता होती नहीं और यवनोद्रेक की विक्रिया से रहित। यवन का उद्रेक है अर्थात यवन का जोश, यवन की अतिशयता, युवाने का बहुत जोश हो उसमें विकलता दिखे, ऐसी विकलता होती नहीं। शांत समुद्र जैसे गंभीर होता है, समझ में आया? ऐसी दशा अंदर में वितरागता है उसको ऐसा होता है, उसको निश्चय सहित व्यवहार कहने में आता है, समझ में आया? ऐसा अकेला व्यवहार तो अनंत बार हुआ, वह व्यवहार कहाँ है? उसको तो व्यवहार नाम भी नहीं देंगे। आरोप तो तब लगे ना कि जब निश्चय हो, तो निश्चय बिना व्यवहार कहाँ से लागू पड़े? वो लागू वाला गु दीर्घ, निमित्त भी कहाँ उसका अच्छा है। यहाँ रुकते अभी हम, बाकी चर्चा कल करेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तकनम सदा देत हो। आशा भी।